ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर आपको याद हो पिछली कड़ी में हमने एक बहुत सुंदर अनुभव भी सुना था और ये भी समझा था कि बिना डिसऑनेस्ट हुए, बिना करप्शन को से हाथ मिलाए हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने काम करवा सकते हैं। एक बात इसमें हमें सोचने की जरूरत है कि जैसे हम बड़े बड़े अपनी फैक्ट्री को खोलना चाहते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को शुरू करना चाहते हैं, बड़े धर्म के काम करना चाहते हैं, कई बार हमारे मन में आता है कि बिना हमें पैसे दिए या इस तरह की रिश्वत दिए हुए काम नहीं होता है। लेकिन अगर देखें, बार बार बात करते हैं कि बीज क्या है, अगर हमारी जो नींव है, जो हमारे इतने बड़े काम की जो शुरुआत है, उसमें ही करप्शन का बीज है, तो क्या हम उस पर धर्म का कार्य कर पाएंगे? या हमारा अपनी ही फैक्ट्री हम करना चाहते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाह रहे हैं, उसकी नींव हम कैसी रख रहे हैं? ये बात ध्यान देने योग्य है। आज और नींव की तरफ चलते हैं कि नींव मजबूत है तो फिर वो पेड़, वो जो पूरा एक सामने हमारे सपना साकार कैसा होगा। आज बात करने के लिए हमारे साथ खास माउंट आबू से बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमार ब्रदर अशोक भाई हैं और साथ ही ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
ओम शांति।
अशोक भाई, पिछली कड़ी में एक बहुत इम्पोर्टेंट हमें एस्पेक्ट मिला था, बिना करप्शन के, बिना रिश्वत दिए हुए सरकारी और पॉलिटिकल तंत्र के साथ एक बहुत बड़ा काम हुआ था, जो आपने कहा कि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी और शायद अनजाने में कुछ गलती भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी मेहनत ज्यादा करके परमात्मा की शक्ति मिली थी और वो काम होता गया था। एक और बात है, आपने कही थी कि हर बार अगर हमारे सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है, उसे घबराकर, अपनी वैल्यूज को छोड़े बिना अगर हम काम करते हैं तो हमें एक कुछ सबक मिलता है, कुछ सीखते हैं। क्या सीखा था आपने और जो वो सीखा उसके बाद वो कहीं आगे काम आया, कुछ और ऐसा क्रिएट किया?
हॉस्पिटल प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद हमें अपने इंस्टीट्यूशन के विकास के लिए, फॉर डूइंग मोर ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, वी हैड टू लुक फॉर ए बिगर पैच ऑफ लैंड एंड बिगर कंस्ट्रक्शन देन आर ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स, विच वॉज बिकमिंग टू स्मॉल बिकॉज देयर वी हैड अकोमोडेशन फॉर ओनली 600 to 700 पीपल। और अब तक संस्था का इतना विकास हो चुका था कि 2000 लोग तो रेगुलर लोग आने शुरू हो ही गए थे, इसीलिए हमने हॉल बनाया था। हॉल तो बन गया लेकिन रहने की अकोमोडेशन भी कम थी। और हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन पीस मार्च के बाद कुछ प्रोफेशनलिज्म की ओर बढ़ने शुरू हो गए थे। जैसे युवाओं ने यात्रा की और ग्रामीण सेवा प्रारंभ हुई, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमने एजुकेशनिस्ट के लिए शुरू किया और बच्चों के कार्यक्रम होने शुरू हो गए, तो फिर हमने एजुकेशन विंग बनाया, यूथ विंग, एजुकेशन विंग, फिर और आगे बढ़े तो मेडिकल विंग बना, फिर साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग बन गया, क्योंकि मैं इंजीनियर बेसिकली हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो इंजीनियर्स विंग की हमें बहुत इच्छा थी। और खास तौर पर क्योंकि हॉस्पिटल में हमने ये सीखा था कि एनवायरमेंट का एक बहुत बड़ा इश्यू होता है जिसके ऊपर किसी प्रोजेक्ट को रोका जा सकता है, तो ये भी संकल्प था क्यों ना हम कुछ एनवायरमेंट के फील्ड में ऐसा काम करें कि वो एक अद्वितीय चीज बन जाए। और प्रोफेशनल्स, प्रोफेशन क्योंकि समाज में बहुत सारे हैं, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए हमें एक प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, इसलिए एक करीब 35 बीघा जमीन माउंट आबू के आउटस्कर्ट्स पर एक सालगांव विलेज है, उसमें ली गई। और वो चूंकि संस्था के फंड्स को देखते हुए हमने 16 लाख रुपए की वो जमीन हमको मिल गई, हमने ले भी ली, बट देन इट वॉज फुल ऑफ ब्लैक शीट रॉक्स एंड लेंटिना करके एक झाड़ी होती है जो जहां पैदा हो जाए वहां और कुछ नहीं पैदा होता, तो इट वॉज फुल ऑफ दोज श्रब्स विच आर नो यूज। लेकिन जमीन तो हमने खरीद ली, अब उस पर एक अकेडमी का निर्माण करने का संकल्प। हमारे निर्वैर भाई और दादी जी को हमेशा कोई ना कोई नई चीज बनाने का शौक रहा है, तो इस बार दादी को संकल्प था कि एक यूनिक अकेडमी, विद्यापीठ बनना चाहिए, और निर्वैर भाई को ये संकल्प था कि उसमें लेटेस्ट प्रोफेशनल एनवायरमेंट भी हो और हम कुछ ऐसा काम शुरू करें कि प्रोफेशनल्स को हम आकर्षित कर सकें। अभी तक एक आध्यात्मिक या धार्मिक संस्था का रूप था, हम उसको एक अकेडमी का रूप बनाएं, लेकिन हर जगह आ जाता है। राजस्थान में कंस्ट्रक्शन के ऊपर काफी कंस्ट्रेंट्स माउंट आबू में शुरू से ही रहे हैं, और अभी हमने एक नया नया अस्पताल बनाया था, तो अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए कोई बाधा तो आएगी, लेकिन उसको सॉल्व करने का भी कोई नया तरीका निकालना होगा। उस तरफ से वो सीएम भी चेंज हो चुके थे, अगर वो होते भी तो शायद इतना बड़ा प्रोजेक्ट दोबारा क्लियर करने में सक्षम थे वो। तो हमारे गवर्नर साहब डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी आ गए थे बनकर के, और उनका गवर्नर रूल का पीरियड चल रहा था जब ये बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट किया गया, और उसमें भी हमें एक और इकोनॉमी का ध्यान रखते हुए स्टेप रखा था कि हम इसकी कन्वर्शन पर अगर 35 बीघा कन्वर्ट कराएं तो बहुत पैसा लगता है ऑफिशियल, तो उसे भी कैसे कट डाउन किया जाए। तो एक नया क्लॉज ढूंढा गया कि अपनी जमीन आप सरकार को दे दीजिए, सरकार उसको कन्वर्ट करके उसका चेंज ऑफ लैंड यूज करके आपको देगी विदाउट कॉस्ट, प्रोवाइडेड यू मेड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देयर। सो वी थॉट ऑफ मेकिंग आफ्टर ए मेडिकल इंस्टीट्यूशन वी वॉन्टेड टू मेक एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो अगेन द सेम प्रोसेस आवर चेंज ऑफ लैंड यूज स्टार्टेड, और चूंकि हॉस्पिटल में हमने सीखा था क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आती हैं, वो सारी जो ट्रेनिंग मेरे लिए थी वो बहुत काम आई, और हम इसका चेंज ऑफ लैंड यूज बहुत जल्दी करा पाए। बहुत जल्दी से मेरा मतलब है वही 2 साल। फाइल तो सरक सरक ही चलनी है, लेकिन इस बार हमने ये फायदा किया कि उस समय तो हम ऑब्स्टिकल्स में फंसे हुए थे, इस बार हम ऑब्स्टिकल्स का संकल्प नहीं ले रहे थे कि हमें वो सॉल्व करना है। हमें पता था 2 साल लगेंगे, तो हमने उस एरिया का लैंड यूज लैंड डेवलपमेंट शुरू कर दिया, और उसको एनवायरमेंटली एक यूनिक पीस बनाना हमने पहले से ही प्रारंभ कर दिया।
सो यू यूज द टाइम, इनफैक्ट ये जो आप यू नो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, जो वेटिंग पीरियड होता है, इवन इफ मुझे मालूम है कितना टाइम लगेगा, दैट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। क्रिएटिवली इनोवेटिवली एक्चुअली हाउ टू प्लान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में?
एक्चुअली जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन में है, जैसे भाई साहब ने बताया, दादी प्रकाश मणि जी, दादी जानकी जी, निर्वेर भाई साहब, ये सब एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, लीडर्स हैं, लेकिन योगी हैं। यू सी इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ लीडरशिप बट स्पिरिचुअलिटी साथ में है। तो आज के दुनिया में अगर हम लीडरशिप के लिए देखें कि लीडर वो जो क्रिएटिव है, जो इनोवेटिव है, लेकिन क्रिएटिव और इनोवेटिव वो हो सकता है जिसका माइंड साइलेंट है, तो उसके इंट्यूशन वर्क करेगी। टुडे वी टॉकिंग इन द वर्ल्ड अबाउट लीडरशिप विद इंट्यूशन, नॉट लीडरशिप विद लॉजिक, लीडरशिप विद इंट्यूशन। लेकिन इंट्यूशन किसकी काम करेगी? जिसका कॉन्शियस माइंड साइलेंट है। लेकिन आज के जो हमारे लीडर्स हैं वो तो स्ट्रेस से घिरे हुए, दे आर कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेस, एजिटेशन, तो उनका कॉन्शियस माइंड साइलेंट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव है, एंड उसमें फिर स्ट्रेस मतलब नेगेटिव वेस्ट थॉट्स, तो इंट्यूशन कैसे एक्टिवेट होगी? तो लेकिन क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो मेडिटेटिव लाइफस्टाइल उनका फाउंडेशन है, तो उनका कॉन्शियस माइंड बहुत साइलेंट है, तो उनका जो सारा कार्य होता है इट इज विद इंट्यूशन, एंड कार्य उसका है, लेकिन उसके परमात्मा के टचिंग को कैच करने के लिए भी आपका अपना माइंड साइलेंट होना चाहिए। तो जहां साइलेंट माइंड है वहां इंट्यूशन तो आपके दिन रोज का एक हिस्सा बन जाती है। आप किसी भी ब्रह्मा कुमार भाई बहन से पूछें, हर एक दो दिन के बाद कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मुझे आज सडनली ये बात आई, आज सडनली ये आया, जो कि लॉजिक को डिफाई करती हैं वो बातें कई बार, लेकिन बिकॉज मेडिटेशन हेल्प्स इंट्यूशन टू गेट कल्टिवेटेड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पोटेंशियल को आप यूज करना शुरू करते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड साइलेंट होता जा रहा है, सो देन क्रिएटिविटी बिकम्स वेरी सिंपल, इट बिकम्स अ नेचुरल प्रोसेस। एक्चुअली आप बैठकर मीटिंग्स नहीं करते कि कुछ नया क्रिएट किया जाए, कुछ नया सोचा जाए, इट्स जस्ट कम्स एज अ फ्लैश एब्सोल्युटली टू वन ऑफ देम। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये देखा कि इट डजंट मैटर कि वो आइडिया किसको आया है, इट डजंट हैव टू नेसेसरली बी द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी भाई बहन को अगर कुछ ऐसे सुंदर आइडिया आता है, वी हैव द लिबर्टी टू वॉक अप टू द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, शेयर द आइडिया, एंड वी हैव सीन हाउ इट्स बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्रिएटिविटी नॉट लिमिटेड ओनली टू द टॉप लीडर्स, एवरीवन इज अ लीडर।
वेरी ट्रू, एंड इनफैक्ट ये जो एम्पावरिंग फैक्टर है, एंड जैसा आपने कहा कि साइलेंट, तो क्या आप कहना चाहेंगे जो ना सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स, कि बिफोर टेकिंग एनी स्टेप्स टू मूव इन टू न्यू एराज या किसी नई डायरेक्शन में जाने का, कुछ नया करने के लिए किस तरह से वो अपनी क्रिएटिविटी को या अपनी इंट्यूटिव पावर्स को हॉन करें?
कई बार जब हमें कुछ नया करना होता है हम कहते हैं बहुत ज्यादा सोचो सोचो और सोचो और सोचो, हम कहते हैं साइलेंट हो जाओ ताकि वो इंट्यूशन आपको आइडिया देगी, लॉजिक नहीं। आज आप जो आइडिया क्रिएट करेंगे उसको इम्प्लीमेंट होने में कुछ साल लगने वाले हैं। वर्तमान समय हम समाज में देखें तो चेंज एकदम अनप्रडिक्टेबल है, तो आज के समय में लॉजिकल थिंकिंग से ज्यादा इंट्यूटिव थिंकिंग वर्क करने वाली है। लॉजिक शायद अब डिफाई होगा क्योंकि थिंग्स जस्ट चेंज यू नो सडनली, लेकिन इंट्यूशन वर्क होगी। उसके लिए सिर्फ उस डिसीशन के टाइम नहीं लेकिन जनरली अपने जीवन में अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा साइलेंट करें, और स्पेशली अगर कोई मीटिंग करने वाले हैं अपने आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ या अपनी टीम के साथ, ऑलवेज स्टार्ट इट विद साइलेंस। यू नो आप साइलेंस करें, सभी आपकी टीम में साइलेंट हो जाएं, सभी अपने पास्ट अपना कॉन्शियस माइंड को साइलेंट कर दें, फिर मीटिंग को स्टार्ट करें, तो देयर इट विल बी देयर डेफिनेटली
विद अ न्यू बिगिनिंग। वेरी ट्रू। इनफैक्ट अशोक भाई हम यहाँ पर पहुंचे कि क्रिएटिविटी का एक नया आयाम आ रहा था ऑर्गेनाइजेशन का भी, और दो साल का इंतजार में आपने बहुत कुछ क्रिएटिवली उस लैंड की डेवलपमेंट की थी। आगे
नॉट ओनली लैंड डेवलपमेंट बट टू अल्टीमेटली मेक द प्रोजेक्ट। लास्ट टाइम तो हम हॉस्पिटल के केस में तो चेंज ऑफ लैंड यूज के साथ साथ प्लान वगैरह बना के भेज चुके थे, अभी हमने सीख लिया था कि पहले प्लान नहीं भेजने है। तो वो चेंज ऑफ लैंड यूज के प्रोसेस में उसको सचमुच उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, बिकॉज एवरीथिंग इज फर्स्ट क्रिएटेड इन द माइंड्स एंड देन इट कम्स ऑन द ग्राउंड। जैसे हॉस्पिटल में भी डॉक्टर अशोक मेहता जो कि हॉस्पिटल्स बनाते रहे हैं और जो ग्लोबल हॉस्पिटल बनाने के प्रेरणा स्रोत थे, उनका निवैर भाई के साथ मेन योगदान था, और निवैर भाई को फिर वो फ्लैश टचिंग्स वाला जैसे बहन जी बता रही हैं, तो साइलेंस में बैठते हैं और एक इंट्यूशन कहते हैं उनको, बिल्कुल एक फ्लैश डिजाइन दिखाई देता है और उसके हिसाब से वो ड्राइंग्स हाथ से बनाते हैं रफ एंड देन आर्किटेक्ट रिफाइंस इट। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस ए वेरी यंग आर्किटेक्ट वाज डॉक्टर अशोक मेहता'स डॉटर हु वाज इन हर फाइनल ईयर, हर क्रिएटिविटी वाज फुल्ली यूज्ड एंड द हॉस्पिटल केम आउट टू बी ए यूनिक डिजाइन। यानी हॉस्पिटल को एक जीन के डिजाइन में बनाया गया दिलवारा मंदिर को देखकर, विच वॉज यू नो टोटली इन आर ओपिनियन अनरिलेटेड, लेकिन सचमुच दिलवारा मंदिर में भी गोल गोल गुंबज है और हमारे हॉस्पिटल में भी जीन के डिजाइन को दिलवारा के साथ कंपेटेबल करके बना दिया गया। अब अकेडमी बननी थी तो अकेडमी की भी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसा फाइनल प्रोजेक्ट होना चाहिए उसके लिए फिर नवैर भाई निमित बने। ही इज वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड सोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हु हैज बीन गिफ्टेड विद दैट इंट्यूशन पावर एंड देन ही हैज अनदर क्वालिटी, ही टेक्स द होल टीम विद हिम। तो जो जो लोग भी अच्छे इंजीनियर्स या डिजाइनर्स हैं उनको उन्होंने साथ लिया और एक अच्छे आर्किटेक्ट यंग को साथ लेकर के उसकी डिजाइनिंग शुरू की। फिर हर चीज को खुद दादी जी एक एक स्टेप पर देखती हैं और जो उनके विचार होते हैं वो भी साथ में मर्ज किए जाते हैं, और फाइनल डिजाइन अप्रूवल के टाइम पर तो बाबा को भी दिखाया जाता है, तब जाकर अप्रूव होता है वो डिजाइन। तो हर एक का फुल टीम का योगदान उसमें होता है। जैसे लैंड डेवलपमेंट में काफी लोगों के विचार थे, ऐसे कंस्ट्रक्शन में भी सबने विचार देखे। जब तक फाइल थ्रू हो चेंज ऑफ लैंड यूज की, टोटल डिजाइन बहुत सुंदर बन चुका था। इट वॉज सो डिफिकल्ट डिजाइन हेयर कि कई आर्किटेक्ट्स वहां लाया गया बड़े बड़े को, और वो कहें इस ब्लैक शीट रॉक्स पर क्या बनेगा, और आप कहते हैं कि रॉक को आपने ब्लास्ट ही नहीं करना है, हाउ कैन यू मेक ए स्ट्रक्चर विदाउट ब्लास्टिंग रॉक्स, पहले फ्लैट करेंगे तभी तो कुछ बनेगा।
तो वो रॉक्स के समेत रॉक्स रही वहां पर,
इकोलॉजिकल जिसे कहते हैं कि इकोलॉजी के साथ या एनवायरमेंट के साथ मर्ज हो जाए, उसकी एक प्राइमरी कंडीशन होती है टू सस्टेन द रॉक स्ट्रक्चर। You can create the most built beautiful building structures if you sustain the rock structure.
एक मुझे यहाँ पे एक बात ही पूछनी, और इनमें से आप में से जो decision makers थे सारे, चाहे वो दादी जी हैं या निर्वैर भाई या आप या और भी लोग थे, उनको किसी के
बहुत से लोग हैं
past experience नहीं था building creates करने का, या ऐसे कोई past experiences नहीं?
नहीं ऐसे नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें buildings का भी idea था, लेकिन architectural design तो based on certain architect principles होता है। और उसमें हमें इवन राजस्थान के जो चीफ टाउन प्लानर हैं उन्होंने भी एक स्पेशल ये कंडीशन दी कि अब हम अगर आपको प्रोजेक्ट पास करके देंगे तो वही देंगे जो इकोलॉजी का एक बेहद का मिसाल बने, अदरवाइज हम इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन आपको पास करके देने वाले ही नहीं है। तो हमारे लिए हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी का रूप बनता गया। राजस्थान सरकार के नियमी कठोरता टू सस्टेन द एनवायरमेंट ऑफ माउंट आबू, और हमारी इंटरनल डिजायर कि वी वांट टू मेक ए सस्टेनेबल प्रोजेक्ट व्हिच हैज टू बी इकोलॉजिकली वेरी नाइसली बैलेंस्ड. सो रॉक स्ट्रक्चर सस्टेनिंग, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, यूजिंग ए वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, जनरेटिंग लॉट ऑफ प्लांट्स एंड सस्टेनिंग देम, दीज आर सम प्राइमरी कंडीशंस विच आर कंसिडर्ड एज इको फ्रेंडली कॉम्प्लेक्स कंडीशंस. सो मच सो कि आप रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम का उपयोग करें, चाहे मेन पावर सप्लाई हो या ना हो. स्टैंड बाई डीजल सेट आपके पास है, डीजल खत्म हो जाए फिर भी आपकी लाइट जलती रहनी चाहिए, ऐसा सोलर से ही संभव है. खाना आपको बनाना है, फ्यूल नहीं है, आप खाना कैसे बनाएंगे? प्लांट आपको काटना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए. सो कोई वी हैव नेवर बर्न्ड ए पीस ऑफ वुड और चारकोल इन दैट कॉम्प्लेक्स फ्रॉम डे वन. मीन्स वी ऑलवेज मेंटेन ए स्टीम कुकिंग सिस्टम फर्स्ट ऑन बॉयलर्स एंड लेटर वी इनोवेटेड ए न्यू थिंग. ए न्यू डिजाइन वॉज रादर इनोवेशन वॉज कैरिड आउट. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टीम वॉज जनरेटेड बाई सोलर एनर्जी इन ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स. तो ऐसे बहुत से, टू इंटीग्रेट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी वॉज आर मेन पर्पज. तो हमने ऐसे बहुत से नए नए प्रोसीजर्स इवॉल्व किए जो राजस्थान के चीफ टाउन प्लानर के दिमाग में बहुत ईजिली फिट हो जाते थे, अदरवाइज इतने बड़े स्ट्रक्चर को सेंक्शन करने वाला नहीं था. ये बिल्डिंग मर्ज होनी चाहिए. वी यूज द बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ एशिया मिस्टर उत्तम जैन, हु इज ओनली एन एक्सपर्ट ऑन हॉल्स. उसने कितना बड़ा हॉल बनाया, दैट वॉज ऑल्सो मर्ज इन द सराउंडिंग्स. ये तभी संभव होता है जब आप रॉक स्ट्रक्चर को सस्टेन करें, वरना संभव नहीं होता है. आज आप उस कॉम्प्लेक्स को देख के आइए, आपको लगेगा आप सर के मॉडल में आ गए. जो लोग भी वहां जाते हैं उनको प्रवेश करते ही वह एक बहुत लाइटनेस का आभास होता है और उसका एम्बियंस इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि मैं भी जब 7-8 दिन के बाद बाहर होकर के जाता हूं तो मैं कहता वाह प्रभु कैसी तेरी रचना है, कहां आपने रखा है हमको, ऐसा मेरे मुंह से हमेशा निकलता है. इतना सुंदर वो ज्ञान सरोवर का कॉम्प्लेक्स बना है.
अशोक भाई इतना सब कुछ बन रहा था, मतलब इतने सारे प्रोफेशनल्स भी आना और वो अपनी फीस के साथ ही मुझे लगता है आएंगे.
Yes, yes.
और इतना बड़ा स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, चाहे इनोवेशंस कितनी हो, क्रिएटिविटी कितनी हो, पैसे की आवश्यकता तो है. और जिस तरह से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो ना मांगता है, जो शुरू में ही हमने बात समझी थी, फिर फंडिंग मेजर आज जो क्वेश्चन मार्क मैक्सिमम एनजीओस के लिए है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, वो है फंड्स. और इसकी जरूरत पड़ती है, बिना पैसों के तो काम हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी गरीब को खाना खिलाना हो. और बहुत सारे गरीबों को खाना खिलाना हो तो कोई पर्सनल कितना कर सकता है, तो इसीलिए डोनेशंस की बात होती ही है. यहाँ कैसे काम हुआ?
ये भी हमारे लिए एक नया लर्निंग प्रोसेस था. संस्था में उस समय केवल, हम लोग वैसे भी बड़े अमाउंट्स डिपॉजिट करके नहीं रखते हैं, केवल 30-35 लाख रुपए हमारे अकाउंट में थे और हमें कम से कम 10 करोड़ रुपए की इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यकता थी. जिस दिन फाउंडेशन स्टोन लगाया गया तो दादी जी को के सामने गवर्नर साहब ने फाउंडेशन स्टोन लगाया और कहा कि मैं 5 लाख रुपया डोनेशन अनाउंस करता हूं इस प्रोजेक्ट के लिए. हर संस्था का नियम है कि हम किससे डोनेशन लेते नहीं, चाहे वो राजस्थान सरकार ही क्यों ना हो. और उधर गवर्नर साहब ने अपने सेक्रेटरी को बहुत टाइट किया हुआ था कि मैंने डिक्लेयर किया है तो 2 दिन में पैसा पे हो जाना चाहिए. नाउ दैट सेक्रेटरी वॉज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज द गवर्नर वॉज अ वेरी टफ पर्सन. सो ही कॉल्ड अस एंड ही सेड, अशोक भाई या तो आप कल एप्लीकेशन दो और पैसे ले लो, और अगर आपका नियम नहीं है तो प्लीज गवर्नर साहब को एक्सप्लेन करो वरना मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी.
अच्छा, इट वाज लाइक ही डोनेटेड, उन्होंने डोनेट कहा
गवर्नमेंट की तरफ से.
गवर्नमेंट की तरफ से उसने 5 लाख की डोनेशन डिक्लेयर की, जबकि उसने कुछ दिन से क्लासेस भी शुरू की थी गवर्नर साहब ने, लेकिन दिस ही अनाउंस एज ए गवर्नर विच इज नॉट विद इन आर रेगुलेशंस. तो दादी जी को सुनाया गया. अब इस समय हमें एक अवसर ऐसा आया कि हमारे निवैर भाई हमेशा सब बड़े काम करते हैं, लेकिन चूंकि एक स्टेट हेड की डिक्लेरेशन को डिनाई करना था, निर्वैर जी ने कहा यह बहुत इमोशनल व्यक्ति है, इसके लिए तो दादी जी ही आगे बढ़कर कोई सोल्यूशन निकालेंगी. ही नॉर्मली फाइंड सोल्यूशन फॉर ऑल थिंग्स, बट हियर ही वेरी वाइजली ही withdrew एंड ही says दादी शुड हैंडल दिस मैन. और दादी हमारी बड़े प्यार से लिसनिंग एबिलिटी टॉप मोस्ट है उनकी, डिसीजन लेने के लिए सदा अवेलेबल रहती हैं, टॉलरेंस उनकी अनपैरल्ड है और अडेप्टेबिलिटी टू सिचुएशंस एंड पीपल इज सुपर क्लास. जो 4 बेसिक क्वालिटीज लीडरशिप की हैं, विच वन हैज टू बी एंड देन टू डू. फर्स्ट यू हैव टू बी समथिंग एंड देन टू डू इज डिस्क्रिमिनेट, टेक डिसीजंस, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजंस एंड देन मेक ए टीम. सो ये सब क्वालिटीज डिस्प्ले करने के लिए दादी प्रकाशमणि जैसा मैंने कोई सैंपल आज तक नहीं देखा. और दादी ने बड़े प्यार से सारी बात सुनी, उनको सुनाया गया। उसने कहा अच्छा ठीक है, गवर्नर साहब को एक चाय के लिए निमंत्रण दो, पीस पार्क में दादी ने आमंत्रित किया है। गवर्नर साहब आए और गवर्नर साहब को ये मालूम था कि दादी ने मुझे क्यों बुलाया है।
अच्छा,
क्योंकि उसने सेक्रेटरी से पूछ लिया, तो दिया 5 लाख रुपया? नो सर, उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी सर, वो लेते ही नहीं है। कैसे लेते नहीं है? पहले तो उसने बोला मुझसे, उसको तो कहा लेकिन हमें कुछ नहीं कहा, और आकर के बैठे। एंड गवर्नर वॉज अ वेरी डीप एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन बिकॉज ही हैज बीन अ CM एंड ए कैबिनेट मिनिस्टर एंड देन ही बिकेम अ गवर्नर, सो लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट मैन हैड। वो भी यूपी गवर्नर होकर के फिर राजस्थान में आए थे। तो उसके बाद आते ही बैठे और ही ब्रॉट हिज कलेक्टर DSP दी कमिश्नर, ही सेज टुडे आई एम गोइंग टू क्वेश्चन ब्रह्मा कुमारीज वेरी डीपली एज अ गवर्नर एंड जेंटलमैन आई वॉन्ट यू टू लर्न एज टू हाउ डू दे मैनेज, आई विल ऑल्सो बी एनलाइटन एंड लेट यू ऑल्सो बी एनलाइटन विद मी। और वो लेकर के आए और पीस पार्क में चाय शुरू हुई और बड़े प्यार से उन्होंने पहला सवाल किया, दादी ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कल आपने मेरे से फाउंडेशन स्टोन लगवाया, आपको इसकी टोटल कास्ट पता है? तो उन्होंने कहा हाँ भाई, मैंने अपने भाई बहनों से बात की थी, क्योंकि यहाँ जो भी प्रोजेक्ट बनता है उसमें वरिष्ठ भाई बहनों की एक हमारी कमेटी है, उन सबको बिठा करके टोटल डिस्कशंस होती हैं। और दादी टेक्स एवरीबडी विद हर इन डिसीजन मेकिंग, दैट्स हर नॉर्मल पॉलिसी। सब ने कहा 10 करोड़ से कुछ ऊपर ही लगेगा दादी। नोट डाउन कलेक्टर, शी नोज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, शी हैज नेवर सीन ए कॉलेज, शी डजंट नो व्हाट इज अ पर चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादी कितने साल में आप इस प्रोजेक्ट को बनाएंगी? कि हमने सोचा है 2.5-3 साल में इसको बनाएंगे, इट्स अ टाइम बाउंड प्रोजेक्ट, नोट डाउन। दादी रोज का खर्चा कितना होगा?
अच्छा, नो आर्बिट्री आंसर्स ना, शायद इतना,
नो नो, स्ट्रेट स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट आंसर। एंड फॉर मी इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ कि किस तरह से एक दो हेड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअल हेड एंड ए स्टेट हेड। इसीलिए नेहर भाई विड्रॉ किए कि ये बहुत प्रिंसिपल्स के मामले हैं, विच वेयर यू हैव टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट। नो डाउन, इट इज अ टाइम बाउंड प्रोजेक्ट, रोज का खर्चा कितना होगा? वो बैठा है ना भाई, लिख रहा है, उसको पूछो कि 10 करोड़ टोटल खर्चा हो और 2.5 साल में बनाना हो तो कैलकुलेट करे, उसके पास कैलकुलेटर है। सो द कलेक्टर टुक अस कैलकुलेटर एंड ही सर 1,50,000 रुपीज पर डे। दादी अब मैं आपसे एक बड़ा क्रुशल बात पूछने वाला हूं, मैंने आपके फंड चेक कराए हैं, मैं IG इंटेलिजेंस से रोज ब्रीफिंग लेता हूं स्टेट के बारे में, क्योंकि आज आपसे मुलाकात थी, मैंने आज ही आपके फंड चेक कराए, आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 35 लाख रुपए। और जिस प्रोजेक्ट को, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना, मैंने बहुत सोशल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कम से कम 10% मनी हाथ में ना हो उस प्रोजेक्ट को अगर आपने शुरुआत किया, इट विल नेवर टेक ऑफ। तो शुरुआत में पहले 10% होना चाहिए, फिर आप भले कंट्रीब्यूशन की बात करती रहे। तो दादी कहती है हाँ गवर्नर भाई, और भी कोई सवाल हो तो सब पूछ लो अच्छी तरह से, मगर मैं दादी जब जवाब देगी, दादी अपने से भी डिटैच होकर बोलने की अभ्यासी थी, लेकिन दादी जब जवाब देगी तो फिर बड़ा शांति से सुनना पड़ेगा। अरे दादी माँ, आप तो मेरी माँ हो, मैं सब कुछ शांति से सुन सकता हूं। तो फिर ध्यान से सुन लो, कल आपने फाउंडेशन स्टोन लगाया तो आपने दादी को बांध नहीं लिया अगले दिन से प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, दादी 3 महीने कुछ नहीं करने वाली। दादी ने मीटिंग में एक विचार निकाला कि फंड्स कैसे रेज होंगे, तो सब ने कहा दादी ईच वन, गवर्नर साहब इंग्लिश अच्छी समझते थे, दादी ने भी थोड़ा इंग्लिश बोलने की कोशिश की, विचार निकला कि ईच वन, ईच डे, ईच रूपी, कम से कम सब देंगे और उसके हिसाब से हम लोग फंड्स इकट्ठे करेंगे। हम एक सेपरेट भंडारी रखेंगे, एक सेंटर की भंडारी होती है जिसमें लोग डोनेशन डालते हैं, एक ज्ञान सरोवर की भंडारी बनेगी, उस प्रोजेक्ट का नाम ज्ञान सरोवर रखा गया और उसमें लोग डालेंगे। तो दादी कितने लोग हैं आपके मेंबर्स? कि 3 लाख। कितने लोग पैसा डालेंगे? कम से कम 60%। नोट डाउन कलेक्टर, शी नोज मैक्सिमम 60% विल डोनेट, एवरीबडी डजंट डोनेट।
दिस इज ब्यूटिफुल।
किस लिए? कुछ बच्चे होते हैं, कई बहुत बूढ़े होते हैं, वो कहां से बेचारे डालेंगे। फिर दादी ये 3 महीने की इंतजार क्यों? कि पहले तो कहा है ना उनको, अब बहने भंडारी रखेंगी सेंटरों में, ब्रांचेस में, फिर लोग पैसा डालेंगे तो 1 महीना लग जाएगा, फिर वो बहन भेजेगी मेरे तक पहुंचने में, चारों तरफ से आएगा तो 1 महीना और लग जाएगा। तो 2 महीने के बाद दादी को मालूम पड़ेगा कितना पैसा आया। आप कितना समझती हैं आएगा? वो बैठा ना भाई, उसको पूछो 60% कितना होता है। एंड ही सेज सर इट इज मोर देन 1.5 लाख रुपीज, शी इज एंश्योरिंग द राइट डोनेशन। दादी फिर ये तीसरा महीना किस लिए? कि भाई 1 महीना आ गया और अगले महीने नहीं आया तो
बफर रख रहे,
She is ensuring money in the pipeline. He says, collector, note down. She is first check. She has created a system of generating funds. Then she is going to ensure that the system is working. And then she is also ensuring money is in pipeline. And then only she will start the project. फिर आपने कहा था ना भी भाई 10% पैसा तो होना चाहिए
तो 10% हो जाएगा
तो दो महीने में कितना पैसा आएगा कि बताओ दादी पूछो पूछो उसको पूछो तो ही सेस सर 50 लाख 1 करोड़ 35 लाख इज ऑलरेडी देयर 1 करोड़ 35 लाख सर हो गया 10% इसीलिए दादी 3 महीने इंतजार करेगी एंड यू नो ही वाज ऑलमोस्ट क्लैपिंग लाइक ए बेबी वंडरफुल दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड देन इफ यू डोंट कॉम्प्रोमाइज विद योर वैल्यू सिस्टम You can do enormously difficult jobs in a very enjoyable manner. She has ensured this. But the last phase left out is, to make a team, you have to take the opposite party in your favor. Now he said, ये तो ठीक है, आपने 5 लाख नहीं लिया, बहुत अच्छा किया, 3 दिन में खत्म हो जाने वाला था. लेकिन दादी, मैं 18 दिन से आपका योग कर रहा हूँ, राजयोग सीख रहा हूँ. As a student, 1 रुपया रोज डालने का मतलब 30 रुपया महीना. मैं रोज तो सेंटर में आ नहीं सकता. मैं 30 रुपया महीना भेज दिया करूं लगा क्यों नहीं तुम विद्यार्थी हो जरूर आप भेज सकते हैं चाय कॉफी पूरी हुई हम लोग वापस आए और घर आते के बाद वो गवर्नर हाउस पहुंचे हम लोग पांडा भवन पहुंचे 10 मिनट के बाद एडीसी आता है एंड सिंस आई वाज एन आर्मी ऑफिसर मच एल्डर टू हिम सर हिज एक्सीलेंसी हैज सेंड मी आई वॉन्ट टू मीट द गवर्नर आई वॉन्ट टू मीट दादी जी आई सेड कम ऑन टेल मैन व्हाट इज द प्रॉब्लम No, sir, I have been ordered by His Excellency to talk to Dadiji only. I said, okay. I went to Dadiji. Dadiji se baat ki ki ADC sahab aaye hain. Achha, ADC bhai aaya, bulao bhai, bulao. Bhaiya ko bulao. To ADC sahab andar jaate hain, Dadiji. Haan, ADC bhai bolo. Unko bhi governor bhai bolti thi. Because she cannot remember all the names. Haan, ADC bhai bolo, kya baat hai? To usne badi kaske salute mara pehle. Kyunki uska kaam tha. Jeb se ek packet nikalta hai. It was 30th March, the payday. He said, Dadiji, Today is the payday and His Excellency has received his pay and his salary of this month. He wanted to give it as a donation from his heart, as a first donation for the project.
This is beautiful, you know. This is what transformation is all about.
You see, without compromising with values, carrying people with you. और जो इन दादियों में वो जो spirituality की ताकत है उस हुज्जत से वो किसी से भी बात कर सकती चाहे वो गवर्नर ही क्यों ना हो मेरा भाई गवर्नर मेरा भाई एडीसी मेरा भाई और मेरे भाई इतना ही करेगा क्या
एंड देन यू नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अब वो जो गवर्नर हैं उनके लिए वो जो एकेडमी बन रही है उस वो कितनी इम्पोर्टेंट रही होगी जीवन भर वो मेमोरी उनके साथ रहेगी कि
जैसे आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं ना उस गवर्नर साहब को हमने सचमुच 3 साल बाद बुलाया तब तक उनकी ट्रांसफर तमिलनाडु हो गई थी वो एज ए तमिलनाडु गवर्नर विजिट करने के लिए आए और जब उन्होंने एकेडमी को देखा सचमुच उनकी आंखों में ऐसी खुशी के आंसू थे अरे बन गया सर का मॉडल बन गया अशोक इट इज ए मॉडल ऑफ हेवन व्हाट एम आई सीइंग हैज हैपेंड इन 3 इयर्स सचमुच आंखों में खुशी के आंसू आ जाते
बिल्कुल और आज का ये जो अनुभव है जैसे शिवानी अशोक भाई आज मुझे लगता है बहुत सारे जो हमारे परिवार के सदस्य हैं भाई बहन वो भी अनुभव कर रहे होंगे और किस तरह से हर प्रोजेक्ट को सबका प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है यू नो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में है या अगर हम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को भी आगे कराना चाहते हैं भाई बहुत सारे एनजीओ चलाना चाहते हैं थैंक यू सो मच ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही फिर मुलाकात होगी ओम शांति